ओम श्री परमात्मने नमः।
नवा अध्याय। मेरे द्वारा बीच में ही प्रश्न करने से आपने जो बातें कही उनको मैंने सुन लिया। अब मेरे द्वारा बीच में पूछने से पहले आप और क्या कहना चाहते थे? भगवान बोले, मैं पहले विज्ञान से ज्ञान की बात कह रहा था। वही अत्यंत गोपनीय विज्ञान से ज्ञान मैं दोष दृष्टि रहित तुम्हारे लिए फिर कहूंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। वह विज्ञान से ज्ञान तो बड़ा कठिन होगा। नहीं, वह विज्ञान से ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा, गोपनीयों का राजा, पवित्र, उत्तम, धर्ममय, प्रत्यक्ष फल देने वाला और अविनाशी है, तथा करने में, काम में लाने में बहुत ही सुगम है। ऐसी अलौकिक विद्या को सबके सब प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? मनुष्य इस धर्म अर्थात ज्ञान विज्ञान रूप विद्या पर श्रद्धा विश्वास नहीं करते, जिससे वे मेरे को प्राप्त न होकर मौत रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। वह धर्म अर्थात ज्ञान विज्ञान रूप विद्या क्या है? भगवान, अव्यक्त स्वरूप मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है और मेरे में सब संसार है, तथा मेरे में संसार नहीं है और मैं संसार में नहीं हूँ। अर्थात जहाँ प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता मानी जाए वहाँ तो सब प्राणियों में मैं हूँ और सब प्राणी मेरे में है, तथा जहाँ प्राणियों की मेरे सिवाय स्वतंत्र सत्ता न मानी जाए वहाँ मैं प्राणियों में नहीं हूँ और प्राणी मेरे में नहीं है, किंतु सब कुछ मैं ही मैं हूँ। पर इस संसार का उत्पादक और आधार तो कोई होगा ही। भैया, हूँ तो मैं ही, पर मेरा स्वरूप प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और धारण करने वाला तथा उनका पालन पोषण करता हुआ भी उनमें स्थित नहीं है, उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। ये मेरा ईश्वर संबंधी योग अर्थात सामर्थ्य देख समझ। तो फिर वे प्राणी आप में किस प्रकार स्थित है? जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु निरंतर आकाश में ही स्थित रहती है, ऐसे ही सब प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं, ऐसा मान। फिर तो वे प्राणी मुक्त हो जाते होंगे? नहीं, प्रकृति के साथ संबंध रखने वाले भी प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और महासर्ग के आदि में मैं फिर उनकी रचना कर देता हूँ। आप उनकी एक ही बार रचना करते हैं या बार बार? जब तक वे अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के परवश रहते हैं, तब तक मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनकी बार बार रचना करता ही रहता हूँ। जब आप बार बार रचना करते हैं, तब आपका उन कर्मों के साथ संबंध रहता होगा भगवान? नहीं, मैं उन कर्मों से उदासीन की तरह सर्वथा निर्लिप्त रहता हूँ, अतः वे कर्म मुझे नहीं बांधते। तो फिर आप सृष्टि की रचना किस तरह से करते हैं?
वास्तव में तो मेरी अध्यक्षता से मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति संपूर्ण चर अचर प्राणियों की रचना कर रही है। इसी हेतु से अर्थात मेरी अध्यक्षता के कारण ही संसार में विविध परिवर्तन हो रहा है। आपकी शक्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है, फिर भी लोग आप पर श्रद्धा क्यों नहीं करते? मूल लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। वे मूढ़ लोग किस तरह के होते हैं भगवान। वे मूढ़ लोग आसुरी राक्षसी और मोहनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं और उनकी सब आशाएं सब शुभ कर्म और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं कर्म और ज्ञान सत्व देने वाले नहीं होते। फिर आप पर श्रद्धा रखने वाले कौन होते हैं भगवान? जो मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी मानते हैं, वे मेरी देवी प्रकृति अर्थात संपत्ति का आश्रय लेकर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। आपका भजन करने वालों के क्या लक्षण होते हैं? निरंतर मेरे में लगे हुए प्रति पुरुष भक्ति पूर्वक मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं और मेरे को नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं।
आपकी उपासना करने वालों का और भी कोई प्रकार है भगवान? हाँ है, कई ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से मेरी उपासना करते हैं और कई अपने को पृथक मानकर तथा विश्व को मेरा स्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। विश्व की उपासना आपकी उपासना कैसे हुई भगवान? मैं ही यज्ञ क्रतु स्वधा औषध मंत्र घृत अग्नि और हवन रूप क्रिया हूँ। मैं ही जानने योग्य विधि पवित्रता ओंकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता धाता माता पितामह गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सूर्य उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को वर्षा रूप से वर्षा देता हूँ। अमृत और मृत्यु मैं ही हूँ और तो क्या कहूँ, सत और असत अर्थात जड़ चेतन भी मैं ही हूँ। जब विश्वरूप से सब कुछ आप ही है तो फिर आपको छोड़कर मनुष्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं?
नश्वर सुख भोग की इच्छा से ही सोमरस का पान करने वाले स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप से रहित हुए मनुष्य तीनों वेदों में कहे हुए यज्ञाधिक सकाम शुभ कर्मों के अनुष्ठान द्वारा इंद्र का पूजन करते हुए स्वर्ग की यातना करते हैं। फिर वे पुण्य के बल पर विशाल स्वर्ग लोक को जाते हैं। वहाँ देवताओं के दिव्य भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस तरह वेद त्रय का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुष बार बार जन्मते और मरते हैं।
यह दशा तो सकाम भाव से वेद त्रय का आश्रय लेने वालों की होती है, पर कोई आपका आश्रय ले तो जो अनन्य होकर मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मेरे में लगे हुए भक्तों का योगक्षेम में स्वयं बन करता हूँ अर्थात अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये काम मैं स्वयं करता हूँ। परंतु आपकी उपासना न करके कोई श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की उपासना करे तो जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, सत असत सब कुछ मैं ही हूँ इस दृष्टि से वे भी वास्तव में मेरा ही पूजन मन उपासना करते हैं, पर उनके द्वारा किया हुआ वह पूजन विधि पूर्वक नहीं होता। जब वह पूजन भी आपका ही है तो फिर उनका वह पूजन अर्थात उपासना अविधि पूर्वक क्यों है भगवान? यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों का भोक्ता और संपूर्ण संसार का मालिक मैं ही हूँ, पर वे मेरे को तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। वह पतन क्या है? देवताओं के भक्त देवताओं को, पितरों के भक्त पितरों को और भूत प्रेतों के भक्त भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जिस भक्ति से आपके भक्त आपको ही प्राप्त होते हैं, वह भक्ति कठिन होगी नहीं, वह बड़ी सुगम है। जो कोई भक्त प्रेम से मेरे को पत्र, पुष्प, फल, जल आदि देता है, उस मेरे में तल्लीन हुए भक्त के द्वारा भक्ति से दिए हुए उपहार को मैं स्वयं खा लेता हूँ। किसी के पास पत्र, पुष्प, फल आदि भी न हो तो वह यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, भोजन करता है, और इसके सिवा जो भी करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। अर्पण करने से क्या होगा भगवान? अरे होगा क्या, वह बंधन कारक सब शुभ अशुभ कर्मों के फल से रहित होकर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। जो सब कुछ आपके अर्पण कर दे उसको तो आप बंधन से रहित कर दे, और जो सब कुछ आपके अर्पण न करे वह बंधन में ही रहे, यह तो आप में बहुत बड़ा पक्षपात है। नहीं भैया, मेरे में यह पक्षपात नहीं है, मैं तो सब में समान हूँ, मेरा न कोई प्रिय है और न कोई द्वेषी है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें विशेषता से हूँ। कोई दुराचारी हो तो क्या वह भी आपका भक्त हो सकता है? हाँ जरूर हो सकता है। पापी से पापी भी दूसरों का आश्रय छोड़कर केवल मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा कर लिया है, उसको केवल साधु मान लें क्या? नहीं, वह तत्काल धर्मात्मा अर्थात महान पवित्र बन जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। भैया तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। आपकी भक्ति के अधिकारी और भी कोई हो सकते हैं क्या? हाँ, पापियों ने स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो जन्म और कर्म से पवित्र ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे मेरे भक्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। मैं ऐसा भक्त कैसे बनूं? तुम इस नाशवान और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन करो। आपका भजन कैसे करूं भगवान? तुम मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरी पूजा करने वाला हो जा और मुझे ही नमस्कार कर, इस तरह मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे परायण हुआ तू, मुझे ही प्राप्त होगा।
गीता माधुर्य, लेखक और बोलने वाले परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज।